मांगिना न केवतियाना कहे तुम्हार मरम हम जाना आना कहे तुम्हार मरम हम जाना केवट कहता है सरकार अरे जब तक मैं अपनी शंका दूर नहीं कर लूंगा जब तक मैं अपना संशय दूर नहीं कर लूंगा तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। प्रभु ने कहा भैया अरे हमारे आपकी मुलाकात तो ये पहली बार हो रही है फिर आप हमारा मरम कौन सा जानते हैं। कहा सरकार अगर आप मरम ही पूछते हैं तो सुनिए मैं कौन सा मरम जानता हूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना भवभंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना पंकज में पत्थर में जान डालने की पत्थर में जान डालने की शक्ति महान है रज चरण में चरणों की धूल को लगते ही जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मूर के लगते ही पत्थर और शिला पर है तो मेरी लकड़ी की नैया छूते तो मेरी लकड़ी की नैया छूते छूते ही बस छू मंत्र है के चरणों की धूल में कुछ ऐसा प्रताप है कि अगर वो पत्थर को भी लग जाए तो पत्थर नारी बनकर आसमान में उड़ जाता है। अरे सरकार जब पत्थर नारी बनकर उड़ सकता है तो मेरी नाव तो लकड़ी की है इसके लिए कौन बड़ी बात है। मंद मंद कुछ मुस्करा अरे बोले श्री रघुराय अपने संशय नाश का तुम्ही बताओ उपाय। और एक तार्की महोदय एक शंका का समाधान और प्रकार से कर रहे हैं। कि केवट ये क्यों कह रहा है कि प्रभो हम आपका मर्म जानते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि एक साधु एक वन में तपस्या कर रहा था, तपस्या करते करते प्रभु जब उसके सामने आए, कहा भक्तराज वरदान मांगो, वो कहने लगा प्रभु हम आपका चरणोदक चाहते हैं। प्रभु ने कहा हे भक्तराज, मैं तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा, मगर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। वन में आग लगी, साधु जलकर समाप्त हुआ, अगला जन्म उसका जो है वो कछुए का होता है। विद्वानों का मत है वो कछुआ प्रभु के क्षीर सागर में जाकर निवास करता है और बार बार प्रभु से अनुग्रह विनय करता है कि नाथ आप जो वादा कर चुके हो कि आपके चरणों का चरणोदक मुझे अगले जन्म में प्राप्त होगा, तो अब तो मेरा जन्म कछुए का हो गया है नाथ, अब तो मेरी ये भावना पूरी करो, क्योंकि जब मैं सर की तरफ जाता हूँ तो शेषनाग जी फुंकारी भरने लगते हैं, जब चरणों की तरफ जाता हूँ तो श्री लक्ष्मी जी भगा देती हैं, अब मैं आपके चरणों का चरणोदक किस प्रकार से लूं। प्रभु ने फिर कहा भक्तराज जाओ एक जन्म और लो, और इस बार जब जन्म लोगे तो मैं अवश्य तुमको अपने चरणों का चरणोदक दूंगा, और जानते हो कैसे, आगे जब त्रेता युग आई है, आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत मां राम कही है, तुम केवट हुई हो बलवाना, तुम केवट हुई हो बलवाना, काहे तुम्हारे मरम हम जाना, तुम केवट हुई हो बलवाना, तासे चरण पड़ेंगे धुलवाना, तासे चरण पड़ेंगे धुलवाना, काहे तुम्हार मरम हम जाना, केवट कहता है सरकार टालते टालते ये तीसरा जन्म आ गया, और आज तीसरे जन्म में भी टाल करके जाना चाहते हो, लेकिन इस बार जब तक मैं आपके चरणों को धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। और बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवट कहता है सरकार, जब तक मैं अपना संशय दूर नहीं कर लूंगा तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। प्रभु कहने लगे तो भैया बताओ तुम्हारा संशय कैसे दूर होगा। केवट ने कहा सरकार मुझसे पूछना चाहते हो तो सुनिए कि मेरा संशय कैसे दूर होगा। अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राजा जी, अपना मेरा ही दोनों का यों काम बना ले राजा जी, क्या चरणों की रज पर संशय है तो रज धुलवा ले राजा जी, रोजी बनी रहे बाधा न आपके काम में हो, और हो कृपा राम पर केवट की, केवट तो प्रेम राम पर हो, कोमल निर्मल धोकर निर्मल दोनों को कर लूंगा, या भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। अरे केवट कह रहा है सरकार, मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कछुआ लाऊं मैं। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कछुआ लाऊं मैं। पहलू पहले लू जांच कठौवे को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। अरे सरकार, बस मेरी प्रार्थना यही है कि मुझे आपके चरणों में जो धूल लगी हुई है उसमें संशय है, और आप उस धूल को धुलवा लें और आराम से मेरी नाव पर बैठें और उस पार जाएं। इससे दो फायदे हैं, मेरा संशय दूर हो जाएगा और नाथ जो ये आपके धूल से भरे हुए पैर हैं, जब मैं इनको धोऊंगा तो ये भी गोरे चिट्टे निकल आएंगे। तब तक देखा कि लक्ष्मण के नेत्र कुछ क्रोध में भर रहे हैं। केवट मन में सोचता है कि अरे लखनलाल, आज तो तुम हमारे घाट पर आए हो। केवट के नेत्रों को जब देखा, केवट जब लक्ष्मण के नेत्रों को देखता है बंधुओं, तो कहने लगा, क्या प्रभु राम, एक बात मेरी सुन लो। अभी तक तो केवल मेरी एक ही शर्त थी कि मैं आपके चरणों को धोऊंगा, लेकिन लक्ष्मण के लाल नेत्र देख करके अब मेरी दो शर्तें और बढ़ गई हैं। प्रभु ने कहा, लो भैया, अब ये दो शर्तें तुमने अपनी कौन सी बढ़ा दी। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि पद पदम धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। शर्त नंबर एक, पद पदम धोई, मैं आपके चरणों को पखारूंगा यानी धोऊंगा। प्रभु ने कहा ठीक, शर्त नंबर एक हो गई। शर्त नंबर दो कौन है? कहा प्रभु, शर्त नंबर दो, पद पदम धोई चढ़ाई, पहले तो आपके चरणों को धोऊंगा, और शर्त नंबर दो है कि मैं आपको अपने कंधे पर चढ़ाकर नाव तक ले जाऊंगा। शर्त नंबर तीन, उतराई नहीं लूंगा। प्रभु ने कहा, भाई पहली बात तो समझ में आई कि आप चरणों को धोएंगे, शंका मिटाएंगे, आखिरी बात भी समझ में आई कि आप उतराई नहीं लेंगे, लेकिन ये भाई बीच वाली बात कि मुझे आप अपने कंधे पर चढ़ाकर नाव पर ले जाएंगे, ऐसा क्यों? मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं, लंगड़ा तो हूं नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैं चलने में असमर्थ हूं। खेवट ने कहा, सरकार आप क्या मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं? जरा एक विचार कीजिए कि मैं आपके चरणों की धूल को धोने के लिए ही इतनी देर से रार मचाए बैठा हूं, और जिस वक्त मैं आपके चरणों को धोऊंगा और गीले चरणों को लेकर के आप नाव तक जाएंगे, तो जितनी धूल में धोऊंगा नहीं, उससे आठ गुनी धूल आपके गीले चरणों में फिर लग जाएगी। इसलिए चरणों को धोकर ही तुरंत मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर तब नाव पर बिठाऊंगा। और एक बात सुन लो प्रभु, लक्ष्मण की तरफ देखकर इशारा करता है केवट कि अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी डर या दबाव में आ जाऊंगा तो मैं सौगंध खाता हूं। मोहि सपथ आन दशरथ लखन, सपथ सब साची कहो। मैं सौगंध खाता हूं आपकी प्रभो और आपके पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं जब तक आपके चरणों को धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, रट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहस करुणा एन की जान की लखन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। जब केवट ने ऐसा कहा तो प्रभु राम आज जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखकर बिहसे, कुछ अजीब सा उनका चेहरा हुआ। ऐसा क्यों? आइए एक पिछला छोटा सा भाव आपको दिखाता चलूं कि प्रभु राम आज जानकी को और लक्ष्मण को देखकर बिहस क्यों रहे हैं। जब तक प्रभु राम का विवाह श्री जानकी जी से नहीं हुआ था तब तक लक्ष्मण का एक नियम था कि जब तक भैया के दोनों चरणों को धोकर उनका चरणोदक नहीं ले लेते थे तब तक वो भोजन तक नहीं करते थे। जब जानकी जी का पदार्पण हुआ घर के अंदर, जानकी जी ने देखा, एक दिन देखा, दो दिन देखा, कई दिन देखा कि भाई लक्ष्मण जी रोज प्रातःकाल उठते हैं और स्वामी के चरणों का चरणोदक पी लेते हैं। एक दिन जब चरण धोने के लिए चले लक्ष्मण जी तो जानकी जी ने कहा, ठहरो लखन, ये अधिकार अब तुम्हारा नहीं है। पति के चरणों का चरणोदक पीने का अधिकार केवल अर्धांगिनी का होता है, अस्तु ये अधिकार मुझे मेरा है और ये अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, माँ एक बात आप मेरी ध्यान देकर सुने, ये मेरा संकल्प है जीवन का कि जब तक मैं भैया के चरणों को पखार कर चरणोदक नहीं ले लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अगर आप मुझे भूख से तड़पता देखना ही चाहती हैं तो ऐसा ही कीजिए। जानकी ने कहा, खैर कोई बात नहीं लखन, लेकिन मेरा भी ये वादा है कि मैं अपना अधिकार जीवन में तुमसे लेकर ही रहूंगी। बंधुओ, समय पलटा। एक समय ऐसा आ गया जबकि होली का त्योहार आया। चारों भाई बड़ा धूमधाम से होली खेल रहे हैं। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। अवध में होली खेले रघुवीरा। कही के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कहके 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 हाथ अंधीरा अवध में होली खेले रघुवीरा।
किसके हाथ में पिचका?
भिखारी है। राम के लखन के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, राम के हाथ, राम के हाथ, राम के हाथ अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। कई के हाथ झांझ ढप सोहे, धान ढप सोहे, धान ढप सोहे, कही के, कही के पुतुलाल, कही के हाथ मंजीरा अवध में टोल खेले रघुवीरा, भरत के हाथ झांझ ढप सोहे, शत्रुहन हाथ, हाँ शत्रुहन हाथ मंजीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, क्या हो रहा है ये भी आप साथ साथ में सुनते चलें।
राम बनावे राम शरण भैया, गला बजावे राम शरण भैया, कह सिद्ध भरे अभिलाष भैया, तुम्हारे अभिलाष भैया, रामचंद्र बजावे मजीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, गला भजावे राम शरण भैया,
राम बजावे राम शरण भैया,
घुंघरू बजावे प्रेमचंद भैया, पुतू बजावे मजीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा,
भैया कसके पिचकारी जिस वक्त लक्ष्मण जी ने जानकी जी के ऊपर मारी तो उनके सारे कपड़े बिगड़ गए। जानकी जी कहने लगे, क्यों लक्ष्मण, क्या तुम्हारे यहाँ का यही नियम है कि किसी के कपड़े बिगाड़ देना? लक्ष्मण जी कहने लगे, तो मैया आपके यहाँ का क्या नियम है? कहा, भाई हमारे यहाँ तो जो रंग डालता है तो वो रंग डालने वाले को या जिस पर रंग डालता है उसे फगुआ देता है। तो लक्ष्मण ने कहा, माँ इसमें कौन सी बात है, अगर यही इच्छा आपकी है तो जो इच्छा हो आप मांग लें। कहा, ऐसे नहीं मांगते, क्योंकि हो सकता है हम जो मांगे वो हमें आप ना दें। और रहीमदास जी ने भी कहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। मान लो हमने आपसे कोई बात कही और उसे आप न पूरी कर सके तो हमारी भी जुबान खराब जाएगी और बात भी नहीं बनेगी। लक्ष्मण ने कहा, माँ क्या आप परीक्षा लेना चाहती हैं? हमारे वंश की ये परंपरा रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगिए आपको क्या चाहिए, काय से नहीं मांगेंगे, पहले आप वचन दें। पा जाओ माता, हम आपको वचन देते हैं, तीन बार त्रिवाचा देते हैं कि आज आप जो भी मांगेंगी हम आपको वो अवश्य देंगे। कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है लक्ष्मण, लक्ष्मण तो सुनो, आज से हमें अपने भैया के चरणों का अधिकार हमको ही दे दो, यानी आज से चरण हम धोएंगे आप नहीं धोएंगे। जब ये सुना तो लक्ष्मण को इतना दुख हुआ कि मूर्छित हो गए। कई घंटों के बाद होश आया तो प्रभु राम आज उसी पुराने भाव को लेकर के और कह रहे हैं इशारों में, हे लक्ष्मण, जिस समय जानकी ने तुमसे चरण मांगे थे तो कई घंटों के लिए बेहोश हो गए थे, और आज तो ये केवट मांग रहा है, ऐसा न करना, तुम दोनों लोग ही बेहोश हो जाना और सारा समय ये नदी के ऊपर ही, घाट के ऊपर ही लग जाए। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन जितई जान की लखन तन, भगवान ने कहा, अच्छा भाई केवट देर मत करो, अब ऐसा है करो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जे ही तेरी नाव न जाई, केवट राम सजाय सुपावा, पानी कठौता भैया जल भरी लावा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार निलागा, चरण सरोज पखार निलागा, चरण सरोज पखार निलागा, चरण सरोज पखार निलागा, चरण सरोज पखार निलागा।